نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير مختصر اصول تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کے نظم جلی میں سے اس میں سے ہم دیکھیں گے آج اگلی چیز ابھی تک ہم کتنے پڑھ چکے ہیں آپ میں سے کوئی بولے گا 12 پڑھ چکے ہیں پہلا کیا تھا ذرا بک میں سے دیکھ کے دہرائی کروائیں ایک دوسرے کو سب بولتے جائیں جو جو نظر آئے اس کے اوپر نظریں جماتے ہوئے شاباش پہلا اصول کیا تھا میں شروع کر دیتی ہوں تفسیر بالقرآن قرآن کی کسی آیت کو پڑھتے وقت پہلا اصول کیا ہے کہ قرآن پاک کی دوسری آیات میں سے اس کو دیکھ لیا جائے دوسرا بولیے اب آپ لوگ بولیں گے میں نہیں بولتی ٹھیک ہے تیسرا صحابہ کے اقوال سے تفسیر چوتھا نمبر تابعین سے نیکسٹ عربی گرامر کے قواعد کی روشنی میں تفسیر چھٹا اجتہاد اور رائے سے قرآن کو سمجھنا نیکسٹ سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ پیچھے سے بات کیا چل رہی تھی نیکسٹ جی نزول ترتیب یعنی قرآن کس ترتیب سے نازل ہوا اور نیکسٹ کتابی ترتیب جو اس وقت چل رہی ہے قرآن پاک میں اس کے ناطے سے اور نیکسٹ آپ گھر سے دہرایا کریں پھر آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ میں ایک دفعہ بول دوں گی نا آپ کہیں گے چلے یہ ابھی پچھلا ہی بول رہی ہیں ابھی آگے والا تو شروع نہیں ہوا حالانکہ یہ سارا بولنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ پیچھے والے حصے سے جڑ جائیں ذہنی طور پہ تو 12 جو ہم نے پڑھا تھا وہ کیا تھا قرآن کے نظم کو سمجھنا نظم خفیف آج ہم پڑھیں گے نمبر 13 ہے بک جو ہے اس کا پیج نمبر 34 کا بالکل اینڈ ہے 13 اصول کیا ہے سورہ کے کلیدی الفاظ پر توجہ دی جائے یعنی کی پوائنٹس آف دی سورہز کو سامنے رکھا جائے فہم قرآن کا اگلا اصول یہ ہے کہ ہر سورت کے کلیدی الفاظ پر توجہ دی جائے کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو سورت کا مزاج ہوتا ہے نا وہ عموماً اس کے اندر سے دکھتا ہے پھر ہر سورت کے اندر بعض کلیدی الفاظ یعنی کی ورڈز ہوتے ہیں جو سورت کے فہم یعنی اس کی انڈرسٹینڈنگ میں ممد و معاون یعنی ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں قرآن کے طالب علم کو چاہیے کہ وہ ان پر بھرپور نگاہ رکھے جس طرح ایک کمرے میں صوفے دیکھ کر آپ جان لیتے ہیں کہ یہ بیٹھک اور دیوان خانہ ہے کھانے کی میز دیکھ کر کمرے کی غرض و غایت کا اندازہ کر لیا جاتا ہے بالکل اسی طرح ہر صورت کے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں یہ مخصوص اصطلاحات اور یہ مخصوص الفاظ سورت کے مرکزی مضمون یعنی تھیم سے کمال درجے کی مناسبت رکھتے ہیں اور مرکزی مضمون یعنی امود کی دریافت میں ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں اردو مشکل ہوتی ہے تو وہ تاثیر کم ہونے لگتی ہے خلاصہ کیا ہوا کہ قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے ہم اس کے کی ورڈز کو اگر نظر میں رکھیں گے تو اس سے ہمیں سورت کا مزاج سمجھنے میں مدد ملے گی مثالیں اب دیکھتے ہیں کلیدی الفاظ کی مثالیں کی پوائنٹس جو سورت کے ہیں سورت الکہف میں زینت کا لفظ 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے سورت الرحمن میں ذوالجلال والاکرام کا لفظ 2 مرتبہ وارد ہوا ہے یہ دو صفات صرف اسی ایک سورت میں آئی ہیں سورت دہر میں سبیل کا لفظ ابتدا میں بھی آیا ہے اور آخر میں بھی سورت القصص میں علو فی الارض کا لفظ ابتدا میں بھی لایا گیا اور آخر میں بھی جیسے سورت القمر میں کذبو اور کذبا کے لفظ ہیں اب آپ بتائیں ہم نے بیسیوں بار یہ صورتیں پڑھی ہیں نا ہم نے تو نہیں غور کیا کبھی یہ مطلب ہے یعنی قرآن کو پڑھتے ہوئے ڈھونڈیں کہ اس میں یہ کیوں ہے جیسے مثلا سورت مائدہ میں سب سے زیادہ یا ایھا الذین آمنو کا لفظ ہے تقویٰ کے لفظ ہیں ابھی آپ جو ڈیٹیلز پڑھ رہے ہیں اور آگے آپ دیکھیں کہ اسی بک میں جب ہم صورتوں کی ڈیٹیلز پڑھیں گے تو کتنی چیزیں سامنے آتی ہیں نا کہ سورت آل عمران میں اولو الالباب اور اولو الابصار کا لفظ آتا ہے تو یہ مراد ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے ہم ان چیزوں پر نظر رکھیں 13 پوائنٹ سمجھ آ گیا 14 پوائنٹ نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے اقسام القرآن اقسام کون سی ہیں یہاں قسم کے معنوں میں نہیں قسم کے معنوں میں یعنی جن چیزوں کی قسمیں قرآن میں کھائی گئی ہیں ان کو دلائل سمجھ کر دلیل اور مدلول کے ربط کو سمجھا جائے پہلے میں اپنے لفظوں میں بتا دیتی ہوں پھر آگے چلتے ہیں قرآن پاک میں بہت ساری چیزوں پہ قسم کھائی گئی ہے کس چیز پہ کھائی گئی اس کو مدلول کہتے ہیں ان کا ربط دیکھا جائے کیسے ابھی آپ دیکھیں گے फहमे कुरान का अगला असूल यह है कि कुरान मजीद में जो कस्में आई हैं इनके मकसद को समझने की कोशिश की जाए और दलील और मदलूल के रब्त को समझा जाए। अकसामुल कुरान भी दलाइल हैं। कुरान मजीद में लैल, नहार, तीन, जैतून, असर, फज्र, दुहा, अलादियात और मुरसलात वगैरह की कस्में खाई गई हैं। याद आ रही हैं सूरतें? वल लैल, वन नहार, वत तीन, वस जैतून, वल असर, वल फज्र, वल दुहा, वल आदियातु, वल मुरसलात। ठीक है, अब ये वाव के साथ लैल का तल, वाव क्या है इसमें? दलील। तो लैल क्या है? मदलूल। अब समझ आई ये बात, रात की कसम क्यों खाई गई, ये मुराद है। कसम गवाही और शहादत है। ये सारी कस्में किसी न किसी हकीकत, कायदे और कुलिये को साबित करने के लिए खाई गई हैं। मुदर्रिसे कुरान यानी कुरान सिखाने वाला, इसको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि मुकसिम भी ही यानी जिसकी कसम खाई गई है, इधर क्या है? मुकसिम भी ही, लैल, नहार, तीन, इनकी कस्में खाई गई, और मुकसम अलई, जिसके लिए कसम खाई गई, ये क्या है? मसाब वल असर, ये असर क्या है? मुकसिम भी ही, इसके बाद क्या है? इन्नल इंसान लफी खुसर। तो इन्नल इंसान लफी खुसर मुकसम अलही है। किस बात पे कसम खाई गई? इसको मुकसम अलही को जवाब शर्त भी कहते हैं या जवाब कसम भी कहते हैं। ठीक है, इनके बीच में गहरा ताल्लुक है। जाहिर है कि वल असर का खसारे से गहरा ताल्लुक है, समझ आए? इन्नल इंसान लफी खुसर, तो खुसर से ताल्लुक हो गया ना वल असर का। इसी तरह वल असर की जगह वल फज्र नहीं रखा जा सकता। कितनों को ये बात समझ आ गई? जिस बात पे कसम खाई गई है ना, जिस बात की खाई गई, उनके आपस में ताल्लुक है। असर जमाना और खसारा नुकसान, दोनों में रब्त है। अब आप ये नहीं कह सकते वल फज्र इन्नल इंसान लफी खुस, फज्र के साथ खसारे का क्या ताल्लुक है? हाँ, जमाने के साथ खसारे का ताल्लुक है, यानी इन दोनों का रब्त समझा जाए। चंद मिसालें देखते हैं। सूरत यासीन के आगाज में हिकमत वाले कुरान की गवाही इसलिए पेश की गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग सिलसिला रिसालत की आखिरी कड़ी समझकर ईमान लाएं। यानी सूरत यासीन के शुरू में आप पढ़ते हैं ना, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नक लमिनल मुरसलीन। अब देखिए, इन्नक लमिनल मुरसलीन इधर क्या है? जवाब कसम है। कसम खाई गई, बताइए, शाबाश, कुरान की, तो दोनों में रब्त क्या है? के लोग कुरान को पढ़कर नबी सल्लम पर ईमान लाए। सूरत अल इंशिकाक में शफक, रात और चांद की गवाहियां इसलिए पेश की गईं। आती है किसी को आयत? शफक की भी गवाही है, वल लैल, जी, वो क्यामत की तरफ इशारा है। यदि ये तीनों गवाहियां उसको मिलेगी, व शफक, वल लैल, वल कमर, क्यों की गई? ताकि साबित किया जाए कि इंसान को भी मंदरजा बाला तीनों चीजों की तरह एक हालत से दूसरी हालत की तरफ सफर करना है। वो कुशां कुशां चाहे ना चाहे अपने रब की तरफ सफर कर रहा है, यानी इन तीनों चीजों के आने और जाने का तसव्वुर है। तो इन सब में तदरीज है कि एक इंसान की जिंदगी एक हिस्से से निकलकर दूसरे में जाती है, जैसे चांद एक पोजीशन से निकलकर दूसरी पोजीशन में जाता है। फिर सूरह तारिक में जमीन और आसमान की कसम यानी गवाही इसलिए फराहम की गई कि जिस तरह आसमान बादो बारा के फैज से ज़मीन फटकर लहलहाने लगती है, आसमान से बारिश होती है तो ज़मीन पर सब्जा आता है ना, इसी तरह कुरान के फैज से भी इंसानी रूहें सैराब होंगी। कुरान मजीद कौल फसल है, संजीदा कलाम है, हंसी मजाक नहीं। एक मुनकर खुदा, एक मुनकर रिसालत और एक मुनकर आखरत को आप इन दलीलों ही से मुतमईन कर सकते हैं, जिनका वो खुद मुशाहिदा करता रहता है और जिनका वो खुद कायल होता है। बात वाज़े? यानी ये सारी बात जो पढ़ी है, इसका खुलासा क्या है कि कस्में जो खाई जाती हैं और जिन चीज़ों पे वो कसम खाई जाती है, इन दोनों के बीच में एक रब्त होता है। जन्नत और दोजख का मकसद जजा सज़ा यानी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट है। जजा सज़ा के इस इलाही कानून को ज़मीन, आसमान, बिजली, हवा, बारिश, समंदर वगैरह की आफाकी दलीलों से साबित किया जा सकता है जो कुरान मजीद में मौजूद है। 13वां पॉइंट क्या था, दोहरा लें जरा, शाबाश। यानी जो उसके की पॉइंट्स है उस पर तवज्जो की जाए। और अगला पॉइंट 14वां, कसम और कसम जिस चीज़ पर खाई गई है उसके ऊपर गौर व फिक्र हो। 15वां असूल क्या है, 15th असूल क्या है कुरान समझने का? मुतशाबेहात की तावील से बचा जाए। ये बड़ी अहम बात है। कई तफसीरें सिर्फ मुतशाबी हाथ से ही भरी पड़ी होती हैं, और साइड इश्यूज़ को इश्यूज़ और नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाकर इतना हाईलाइट कर दिया जाता है कि ऐसे लगता है कि इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं। और याद रखिए, इसमें अमूमन दूर की कौड़ियाँ लाई जाती हैं। इस्लाम नहीं चाहता कि दूर की कौड़ियाँ लाएं, कुरान समझते हुए करीब की कौड़ी यानी अल्लाह और उसके रसूल की बात के अंदर अंदर रहेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छी बात समझ आएगी इधर उधर जाने से। तो मुतशाबहात से बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। कैसे? फहमे कुरान का अगला असूल ये है कि कुरानी मुतशाबहात की तावील से इज्तनाब किया जाए, मुहकमात और बैजीनात पर तवज्जो दी जाए। मुतशाबहात का इल्म सिर्फ अल्लाह सुबहान ताला ही जानते हैं, इन पर इजमाली ईमान रखा जाए, तफसील से गुरेज किया जाए। इजमाली क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव, मुकम्मल, ओवरऑल, के बस ये हम मान गए, जो अल्लाह ने कह दिया हम मानते हैं। अब इसमें चार चीज़ें आ रही हैं। नंबर एक, हरूफ मुकत्तात, इसके सही मतलब को अल्लाह ताला से मंसूब किया जाए और हतमी ज़ाती राय से हत्तुल इम्कान बचा जाए। नंबर दो, कुर्सी, अर्श, इस्तवा वगैरह जैसे अल्फाज की तफसील और तकयीफ से गुरेज किया जाए। तफसील तो हम समझते हैं ना, तकयीफ क्या होती है? कैफियत मालूम करना, हाउ वाज, कैसा है अल्लाह, कैसे बैठा है, कुर्सी पे बैठा है, खड़ा है, अर्श पे कैसे है, मुस्तवी कैसे है, यानी उसकी कैफियत ना पूछी जाए, ये पूछना बिदअत है। फिर इसी तरह मुतशाबहात के बारे में ये बात जहन में रखी जाए कि वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, आले इमरान सेकंड में, कि इसके बारे में ज्यादा ना बोले। कई लोग क्या कह देते हैं हरूफ मुकत्तात के बाद, इसके मानी अल्लाह और उसका रसूल जानते हैं? नो, सिर्फ अल्लाह जानते हैं। वल्लाहु आलमु बि मुरादिही, क्योंकि अल्लाह के नबी ने भी कहा कि मुझे अल्लाह ने नहीं बताया, बस ये बताता हूँ कि अलिफ के ऊपर 10 नेकियाँ, लाम पे 10 नेकियाँ और मीम पे 10 नेकियाँ। ठीक है, तो ये कहना काफ़ी है कि वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह। और चौथी चीज़, तमाम बातिल फ़िरकों की असास मुतशाबहात की बातिल तावील पर मुश्तमिल होती है। नबी सल्लम की जो हदीस है कि मेरी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे, 73, तो वो क्या हैं के लोगों ने मुतशाबहात पे बहसें की हैं। असमाउल सिफात और मुतशाबहात पे गौर करने से उम्मत 73 फ़िरकों में बटी है। इतना करीब फ़र्क होता है कि अल्लाह के बिना, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ा मैं कांप के रह गई। मुझे ऐसे लगा कि बस एक किनारे का फ़र्क रह जाता है एक सच्चे मोमिन और एक ख्वारिज में और मोतज़िला में। इतनी सी गलती लगी खारजी बन गए, इतनी सी गलती लगी मोतज़िला में चले गए, और आप देखिए कि वो इस्लाम की, वो कहने चाहिए, चार दीवारी से निकल गए। तो हमेशा याद रखिए, ऑथेंटिक चीज़ पे अमल करें, थोड़ा ले लें अल्लाह से कि अल्लाह हम खतरों से बचते हैं, हमने दीन में रहना है, दीन से निकलना नहीं। या आजकल जो शबरात के नाम पर लोग कर रहे हैं, पहली दफ़ा ये बिदत इस साल मैंने देखी है कि अब वो माफ़ीनामे लोगों को जा रहे हैं। मुझे बताइए, इस तरह माफ़ियाँ हो जाती हैं? आप अपने किसी बहन भाई को सोचे जिसे 4 साल से रूठे में, 100 लोगों में एक उसको भी ये मैसेज भेज दिया तो खुश हो जाएगा आपसे? जाइए, शर्मिंदगी का इजहार करें, दिल साफ करें, लिए दिए रिग्रेट फील करें तो हो जाएगा। ये रस्म, ये है असल में आज के दौर में कि नहीं रह जाएगा इस्लाम अगर रस्म। अब ये लोगों ने माफिया नामे भेजने शुरू कर दिए, आज रात ये होगा वो होगा, बस अल्लाह की बना, दिन ब दिन इस्लाम रस्म पे बनता जा रहा है। अल्लाह अकबर। 16वां पॉइंट, 16th पॉइंट, शाने नजूल का मतलब इंतबाके नजूल है। यह बड़ा अहम नुकता है, इसको थोड़ा सा समझिए। शाने नजूल क्या होती है? कब उतरा ये कुरान की आयत? किस वक्त उतरी? वहां उस वक्त हालात क्या थे? तो फहमे कुरान का अगला असूल यह है कि शाने नजूल के सही मतलब को समझा जाए। इस सिलसिले में हजरत शाह वलीउल्लाह साहेब मुहद्दस देहलवी ने अल्फौजुल कबीर में नहायत अहम बहस की है। कुरान मजीद क़यामत तक के लिए इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल हुआ है। इस सिलसिले में चंद बातें समझिएगा। नंबर एक, नसीहत और इबरत किसी ख़ास वक्त या शख्स के लिए महदूद नहीं की जा सकती। यानी गो के कोई आयत किसी ख़ास मौके पर नाजिल हुई थी, शान नजूल उसका था, लेकिन उससे मुराद ये नहीं कि उसी दौर में इन तबाक के नजूल है, वो उस मौके पर थी, अब आज आपने इसको अपने हालात पर लेना है, ये मुराद है। इंतबाक उसको इम्प्लीमेंट करना, जैसे आज की मिसाल है कि आप कहते हैं ये दौरे हाजिर के तकाजों के मुताबिक, कुरान की आयतों की तफसीर आप करते शाने नसूल की रोशनी में है, लेकिन उसकी रोशनी में आज के मसाइल का हल। कई लोग कहते हैं ना तफसीर के दौरान आप बिल्कुल आज की बातें करते हैं, आप जो मिसाल देती हैं वो सब समझ आ जाती है, तो ये इंतबाक होता है। ठीक है, फिर दूसरी बात है, शाने नजूल का मतलब इंतबाके नजूल है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का वाक़िया भी हो सकता है, इनसे पहले का भी, बाद का भी और आज का भी। शाने नजुल का मतलब ये मालूम करना है कि ये किन लोगों पर मुंतबिक होते हैं। मुंतबिक समझ रहे हैं ना, इसका इत्तेबाक किस पे होता है, इम्प्लीमेंट किन पे होती है, किन पर चिस्पा होती है, मिस्दा की आयत कौन है। तीसरा नुक्ता, बस खास आयात में माजी का वाक़ जानना लाजमी और ज़रूरी होता है। हैं ऐसी आयतें कुरान की जो वाकई उस वक्त के स्पेसिफिक हालात के मुताबिक ही थी, उसको जानना फिर लाजमी है। मसलन फला जुनाह अलैहिम यत्तवफ़ा बिहिमा, सूरह बकरा 158 में सफ़ा और मरवा की सही के लिए आया। आयत क्या कहती है, बस नहीं गुनाह इसका कि तुम उन पर तवाफ़ कर लो। तब आप कहते हैं अच्छा आज हम सफ़ा और मरवा की सही करेंगे, तो इसके लिए यह कि गुनाह नहीं है कि कर लो, तो दैट मीन्स सवाब भी नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, आप जाके उस वाक्य को पढ़ें कि दौरे जाहिलियत में लोग इन दोनों का तवाफ करना गुनाह समझते थे। क्यों समझते थे, किसी दौर में एक लड़के लड़की ने जिना किया, इसाफ और नाइला, एक को सफा पे रख दे एक को मरवा पे, इब्रत के लिए आने वाले लोगों ने उनके बुत बना लिए और उनको बुजुर्ग समझा। अब लोग उनके, वो जैसे कहना चाहिए कि अपने बुजुर्गों के नाम पे वहां तवाफ करते थे, तो सहाबा के दौर तक ये बात मशहूर हो चुकी थी कि ये तो बड़ी गुनाह की बात है। तो अल्लाह ने कहा नहीं, अब नहीं गुनाह, क्योंकि असल में सफर मरवा इसाफ और नाइला के लिए नहीं बने थे, असल में ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी थे। ज्यादातर मुकामात पर पुराने किस्से को बयान करने की जरूरत नहीं होती। अल्फाजुल कबीर में शाह वलीउल्लाह कहते हैं कि पुराने किस्से ना भी बयान करें लेकिन उसको आज के हालात में मुंतबिक करना जरूरी होता है। फिर आगे देखिए, नजलत फी कजा से मुराद मखसूस अफराद नहीं होते बल्कि अमूमन लफ्ज़ का एतबार किया जाता है। फिर मदह और जम की खबरें भी आम होती। मदह कहते हैं तारीफ को और जम कहते हैं उसके ऑपोजिट को, कि खबरें भी आम होती, यानी किसी की तारीफ की गई, अब किसी खास जगह में किसी की हुई, किसी की मजम्मत की गई। मिसाल है कि कुरान पाक में अब्दुल्ला बिन उबई की मजम्मत की गई, तो आज वो बात हर उसके लिए होगी जिसमें अब्दुल्ला बिन उबई वाली सिफात होंगी। सेम ऐसे ही अबू लहब का जिक्र सुन लें, अबू बकर सिद्दीक की तारीफ की गई कुरान में है, आज जिसने भी ऐसा काम किया उसकी वो मदा होगी। तकरारे नजूल में आयत दो मुख्तलिफ सूरतों पर मुंतबिक होती है, यानी किसी आयत का बाज़ दफ़ा दो दफ़ा नजूल लिखा होता है, कोई कहता है इस मौके पे उतरी, कोई कहता है इस पे, तो फिर उसमें दोनों सूरतों पे उसको फिट कर सकते हैं। ये इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने मुकदमा में लिखा। तो बहरहाल अहम बात समझ आ गई, कॉन्टेक्ट्स अहम है लेकिन उसका इंतबाक आज के हालात पे किया जाएगा। 70वां 17th असूल देख लीजिए, नासिख व मनसूख की मार्फत हासिल की जाए। ये जितना पढ़ा इतनी समझ आ गई, ये बात क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। फहमे कुरान का अगला असूल ये है कि नासिख व मनसूख की मार्फत हासिल की जाए। यहाँ हदीस के बारे में तरद्दुद करने वालों को हम बताना चाहते हैं। ये तरद्दुद कौन करते हैं, इनकारे हदीस वाले, वो कहते हैं हदीसें निकाल दो दीन से ताकि हम अपनी मर्जी का दीन बना लें। क्या चाहते हैं वो, कि कुरान वही जली है और हदीस वही खफी है, वही वही को मनसूख कर सकती है। जिस तरह डॉक्टर मरीज को पहले दौर में एक दवा देता है और फिर कुछ दिन बाद अपनी दवा बदल लेता है, इसी तरह अल्लाह ताला ने भी इंसानों की नफ्सियात को पेश नज़र रखते हुए एक ख़ास वक्त तक एक हुक्म दिया, फिर इसके बाद इसे मनसूख कर दिया। नसख की चार सूरतें हैं, कुरानी वही को मनसूख करती है, कुरानी वही हदीस की वही को मनसूख करती है, हदीस की वही कुरान की वही को मनसूख करती है, हदीस की वही खुद हदीस की वही को मनसूख करती है, यानी कुरान और हदीस एक दूसरे की बात को मनसूख कर सकते हैं। कुरान की बात हदीस से, हदीस की बात कुरान से, और कुरान कुरान से और हदीस हदीस से, मतलब चारों तरीके से भी कोई बात मनसूख हो सकती है। इस सिलसिले का अहम असूल यह है कि हर मनसूख आयत या हदीस के लिए किसी नासिख आयत या हदीस का होना ज़रूरी है, वरना दावा नसख बातिल होगा। हज़रत शाह वलीउल्लाह के नज़दीक पांच आयात मनसूख हैं, अल्फाज़ुल कबीर में ये बात है, मौलाना गौहिरुर रहमान के नज़दीक छः, जबकि शायद इनकी तादाद तीन से ज़्यादा नहीं है। और आपको पता है शुरू में जो तफसीरें लिखी गईं उसमें 500 आयतें भी मनसूख करार दी गई थी। बाद में अदवार में उलमा ने इस पे काम किया, उन्होंने कहा नहीं इतनी नहीं है, कम है, होते होते अब सिर्फ देखे तीन रह गई हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की कलाम की किसी आयत को मनसूख कहना भी बड़ी जुरत की बात है। मौत से पहले वालदैन के हक़ में वसीयत का हुक्म, आयत 180 बकरा मनसूख है। रसूलुल्लाह ने फरमाया वारिस के लिए वसीयत नहीं हो सकती, तिर्मिज़ी 2047 नंबर की रिवायत है। और दूसरी बात है कि माँ बाप का हिस्सा 1/6 आ गया। तो पहली बात फिर क्या हुई, मंसूख। दूसरी मंसूख बात क्या है, बेवा को 1 साल तक नान नफका और रिहाइश का हुक्म है सूरत बकरा 240 में, मंसूख है। अब बेवा को 4 माह 10 दिन सिर्फ जमाना इद्दत में नफका मिलेगा, यानी उसमें पहले क्या था कि औरत को 1 साल तक नान नफका मिलता था, अब क्या है 4 माह 10 दिन तक, बकरा 234 में ये बात है। तीसरी बात है रसूलुल्लाह से अकेले में गुफ्तगू का सदका देने का हुक्म, मुजादिला 12 में है जो मनसूख है, इसी सूरत की आयत 13 नासिख है। कुछ दिन के लिए लोगों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए हुक्म दे दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने से पहले सदका दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वक्त लेने लग गए। नतीजे में ये हुक्म उतरा, लोगों ने नबी से बात ही करनी छोड़ दी। सिर्फ हज़रत अली को मौका मिला इस पे अमल का, फिर कुछ दिन बाद हुक्म को बदल दिया गया। तहज्जुद की नमाज में निसफ शब कम या ज्यादा कुरान पढ़ने का हुक्म सूरत मुजम्मिल 1 से 4 में मनसूख है, आप जितना चाहे कुरान पढ़ा करो। इसी सूरत की आखिरी आयत में फकराउ मा तयस्सर मिन्हु, सूरत मुजम्मिल 20 में, बात समझ गए। पहले क्या था हुक्म कि निसफ शब यानी तहज्जुद की नमाज में आधी रात कम या ज्यादा कुरान पढ़ने का हुक्म था, आपका जितना मर्जी पढ़ो, कम पढ़ो ज्यादा, जो पढ़ सकते हो वो पढ़ लो। फिर इसी तरह बदकार औरतों को मौत तक घर में बंद रखने का हुक्म सूरह निसा 15 में था जो मनसूख है। कुरान कहता है गैर शादीशुदा जानी के लिए 100 कोड़े हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शादीशुदा जानी और जानिया के लिए रजम है, बात समझ रहे हैं, पत्थर हैं। तो अब वो सजाएं बदल गई ना, ये बुखारी की रिवायत है 1912 नंबर की। तो खुलासा क्या निकला, आज 3 चीज़ें हमने पढ़ी, ज़रा दोहरा देगा आप में से कोई। पहली चीज़ क्या पढ़ी, अहम अल्फाज पे नजर रखी जाए। नंबर दो, कसम और कसम जिस पे दी जा रही है उनके रब्त को नोट किया जाए। तीसरी, मुतशाबहात की तावील से रुका जाए। फोर्थ, शान नजूल को आज के हालात पे मुंतबिक किया जाए। और नेक्स्ट, नासिख और मनसूख का इल्म लिया जाए। तो आज हमने 5 असूल पढ़े, याद रहेंगे। चलिए इंशाल्लाह, अब हमारे पास सिर्फ आगे 3 रह गए हैं, वो आखिरी नशिस्त होगी इसके इंट्रो की। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अमल की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।